अध्याय 24 पल्लव चालुक्य संघर्ष। पल्लव वंश। सातवाहन वंश के पतन के पश्चात कांची में पल्लव वंश का उदय हुआ। उसकी उत्पत्ति के विषय में बड़ा मतभेद है। पहला, दुब्रिया महोदय का मत है कि महाक्षत्र रुद्रदामन के प्रथम पल्लव मंत्री सुविशाख ने कांची के पल्लव वंश की स्थापना की थी, अतः पल्लव वंश पल्लव जाति है। राइस महोदय भी पल्लवों की उत्पत्ति पल्लवों से मानते हैं। कांची के एक मंदिर में पल्लव राजनंदी वर्मन द्वितीय की मूर्ति शीश पर राजमुकुट धारण कर रही है। यह राजमुकुट गजशीश की आकृति का है। इस प्रकार का मुकुट धारण करते हुए इंडो यूनानी शासक डेमेटियस चित्र भी उसकी मुद्राओं पर मिलता है। पुनश्च पल्लव और पहलव शब्दों में कुछ समता दिखाई देती है। इसे भी दोनों में संबंध स्थापित करने का आधार बनाया जाता है, परंतु इस मत को स्वीकार करना कठिन है। इस बात का कोई प्रमाण नहीं कि पल्लव वंश की स्थापना सुविशाख पहलव ने की थी। नंदीवर्मन और डेमेटियस के गजशीश एक से हो सकते हैं, परंतु एकमात्र इसी आधार पर नंदीवर्मन को विदेशा मान लेना न्यायुक्त नहीं है। पल्लवों के किसी भी लेख में पहलवों का उल्लेख नहीं है। पल्लवों के आचार विचार पूर्ण भारतीय हैं। उन्होंने भारतीयों की भांति ही अश्वमेध यज्ञ किए। दूसरा, डॉक्टर जायसवाल के मतानुसार प्रवरसेन वाकाटक के एक पुत्र ने पल्लव वंश की स्थापना की थी। उस दशा में पल्लवों को ब्राह्मण होना चाहिए था, क्योंकि वाकाटक ब्राह्मण थे, परंतु तालगुंड अभिलेख के अनुसार पल्लव क्षत्रिय थे। तीसरा, मुदारिया जी रसनेगम का मत है कि पल्लवों की उत्पत्ति चोलों और नागों के सम्मिश्र से हुई थी। इनके अनुसार लंका नरेश किल्ल वल्लवन चोल ने मनुपल्लवन की नाग राजकुमारी के साथ विवाह किया था। इनकी संतान मनिपल्लवन के आधार पर पल्लव कहलाई। चौथा, कृष्ण स्वामी आयंगर का मत है कि पल्लवों का उदय टोंड मंडलम प्रदेश में हुआ था। पल्लव शब्द टोंडेयर का ही रूपांतर है। पल्लव वंश ने लगभग 275 ईस्वी से 897 ईस्वी तक राज्य किया। इस वंश का सर्वप्रथम राजा शिव स्कंद वर्मन था। पल्लव नरेश विष्णुगोप समुद्रगुप्त का समकालीन था। उसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में हुआ है। श्री विष्णु नामक पल्लव नरेश की राजसभा में संस्कृत का प्रकांड पंडित भारवी रहता था। उसने किरातार्जुनीयम की रचना की। इसके पश्चात का पुत्र महेंद्र वर्मन प्रथम राजा हुआ। इसी के समय से पल्लव चालुक्य संघर्ष प्रारंभ हुआ, जो अनेक पीढ़ियों तक चलता रहा। पल्लव वंश का अंतिम राजा अपराजित था। यह चोल नरेश आदित्य प्रथम द्वारा पराजित हुआ और मार डाला गया। इसी के साथ पल्लव वंश का अंत हो गया और पल्लव राज चोल राज में मिला लिया गया। चालुक्य वंश। चालुक्य वंश की तीन शाखाओं ने पृथक पृथक बादामी, कल्याणी और वेगी में राज्य किया। इन तीनों शाखाओं का शासन काल क्रमशः 550 से 750, 950 से 1100 और 600 से 1200 के बीच रखा जाता है। चालुक्यों की जाति के विषय में भी मतभेद हैं। पहला, डॉक्टर भंडारकर चालुक्यों को विदिशा गुर्जरों की संतान बताते हैं। दूसरा, डॉक्टर स्मिथ इन्हें विदेशी चपों की संतान मानते हैं। तीसरा, डॉक्टर राय चौधरी का मत है कि चालुक्यों को सुलीक मानना चाहिए। सुलीकों का वर्णन है बृहत संहिता में आता है। चौथा, डॉक्टर दिनेश चंद सरकार इन्हें कन्नड़ मानते हैं। पांचवा, विल्लड़ के विक्रमादित्य चरित में कहा गया है कि ब्रह्मा के चुल्लुक से उत्पन्न होने के कारण ये चालुक्य कहलाएं। छठवां, पृथ्वीराज रासों में वशिष्ठ के यज्ञ का वर्णन है, उसी की अग्नि से चालुक्य की उत्पत्ति हुई थी। सातवां, अभिलेखों में चालुक्यों को चंद्रवंशी क्षत्रिय कहा गया है। बादामी की चालुक्य शाखा का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण राजा पुलकेशी प्रथम था। इसी के वंशज पुलकेशी द्वितीय के समय से पल्लव चालुक्य संघर्ष प्रारंभ हुआ, जो दीर्घकाल तक चलता रहा। पल्लव चालुक्य संघर्ष। श्री विष्णु के पश्चात उसका पुत्र महेंद्र वर्मन प्रथम पल्लव राज का राजा बना। इसने 600 से 630 तक राज्य किया। यह बड़ा प्रतिभाशाली राजा था। इसी समय चालुक्य वंश में पुलकेशी द्वितीय का राज्य था। उसने अपने समय के अनेक राजाओं को पराजित किया। इसकी सबसे बड़ी विजय उत्तरी भारत के सम्राट हर्ष के विरुद्ध थी। 634 ईस्वी के ऐहोल अभिलेख में इस विजय का वर्णन है। अतः निश्चित था कि दक्षिणी भारत के इन दो महत्वाकांक्षी राजाओं महेंद्र वर्मन प्रथम और पुलकेशी द्वितीय के बीच युद्ध हुआ हो। पुलकेशी ने महेंद्र वर्मन प्रथम पर आक्रमण किया और उत्तरी प्रदेशों पर अधिकार करता हुआ पुल्लूर तक घुस गया। तत्पश्चात उसने कांची पर आक्रमण किया। यहाँ महेंद्र वर्मन ने उसके सारे प्रयत्न विफल कर दिए और वह कांची पर अधिकार न कर सका। फिर भी उसने पल्लवों के उत्तरी प्रदेश को अपने राज्य में मिला लिया। यहाँ उसने अपने भाई विष्णुवर्धन को शासक बनाया। इसी विष्णुवर्धन ने वेंगी की चालुक्य की स्थापना की। 630 ईस्वी के लोहनेर अभिलेख में पुलकेशी को पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों तक अधिपति बताया गया। इससे अनुमान किया जा सकता है कि उसने 630 ईस्वी के पूर्व ही महेंद्र वर्मन को हराया होगा। महेंद्र वर्मन प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश में राजा हुआ। इसने 630 ईस्वी से 668 तक राज किया। पुलकेशी ने इस पर भी आक्रमण किया। नरसिंह वर्मा को लंका के राजकुमार मान वर्मा से बड़ी सहायता मिली। इस बार पुलकेशी पराजित हुआ। अब नरसिंह वर्मा ने उसकी राजधानी बादामी पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिए। पुलकेशी युद्ध करते हुए मारा गया। नरसिंह वर्मन ने इस विजय के उपलक्ष्य में वातापी कोंड की उपाधि धारण की। पुलकेशी की पराजय और मृत्यु से चालुक्य राज्य में बड़ी अस्थिरता आ गई। उसके अनेक सामंतों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। पुलकेशी के पुत्रों में सिंहासन के लिए गृह युद्ध छिड़ गया। दीर्घकालीन अशांति और अस्थिरता के पश्चात पुलकेशी का पुत्र विक्रमादित्य प्रथम स्थिति संभालने में सफल हुआ। उसने 655 से 681 तक राज्य किया। इसने अपने नाना गंग नरेश दुर्विनीत की सहायता से नरसिंह वर्मन को हराकर अपनी राजधानी को पल्लवों से मुक्त कराया। नरसिंह वर्मन के पुत्र और उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन द्वितीय से भी विक्रमादित्य प्रथम का युद्ध हुआ। इस युद्ध में विक्रमादित्य की विजय हुई। महेंद्र वर्मन द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र परमेश्वर वर्मन प्रथम पल्लव वंश का राजा हुआ। इसने 670 ईस्वी से 695 ईस्वी तक राज्य किया। इस पर चालुक्य नरेश विक्रमादित्य प्रथम और उसके मित्र पांड्य नरेश अरिकेशरी पराकुंश मारवर्मन प्रथम ने सम्मिलित रूप से आक्रमण किया। उन्होंने परमेश्वर वर्मन को परास्त कर उसकी राजधानी कांची पर अधिकार कर लिया। परमेश्वर वर्मन ने दूसरा मोर्चा खोलते हुए एक सेना भेजकर चालुक्य राज्य पर आक्रमण कर दिया। इस चाल का अभिष्ट परिणाम हुआ। इस सेना ने चालुक्य सेना को परास्त किया। इधर परमेश्वर वर्मन ने पेरुवल्लनलूर के युद्ध में विक्रमादित्य को पराजित कर अपनी राजधानी का उद्धार कराया। परमेश्वर वर्मन प्रथम के पुत्र नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासन काल में तो शांति रही, परंतु जब उसका पुत्र वर्मन द्वितीय सिंहासन पर बैठा तो पल्लव चालुक्य युद्ध फिर भड़क उठा। इस समय चालुक्य वंश में विजयादित्य का राज्य था। विजयादित्य के पुत्र युवराज विक्रमादित्य द्वितीय ने पल्लव राजधानी कांची पर आक्रमण कर दिया और गंग राजकुमार एरियप की सहायता से परमेश्वर वर्मन द्वितीय को पराजित किया। अब परमेश्वर वर्मन ने चालुक्य के सहायक गंग नरेश श्री पुरुष पर आक्रमण किया। इस युद्ध में श्री पुरुष की विजय हुई और परमेश्वर वर्मन द्वितीय मारा गया। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात विक्रमादित्य द्वितीय राजा हुआ। इसने 734 ईस्वी से 745 तक शासन किया। इसका समकालीन पल्लव नरेश नंदी वर्मन द्वितीय था। इन दोनों ने वंशीय शत्रुता जारी रखी। विक्रमादित्य द्वितीय ने कांची पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। अपनी विजय के उपलक्ष्य में उसने कांची में खूब धन बांटा और मंदिरों को दान दिए। इसके पश्चात वह अपने राज्य में लौट आया। कांची के राजसीश्वर मंदिर में विक्रमादित्य की इस विजय का एक अभिलेख आज भी सुरक्षित है। कुछ समय पश्चात विक्रमादित्य द्वितीय के पुत्र एवं युवराज कीर्तिवर्मन द्वितीय ने कांची पर फिर आक्रमण किया और पल्लवों को पराजित किया, परंतु कांची के प्रचुर संपत्ति लूट कर वह अपनी राजधानी वापस चला गया। नंदी वर्मन द्वितीय ने चालुक्यों के मित्र गंग नरेश श्री पुरुष पर आक्रमण किया और उसे पराजित किया। इस दीर्घकालीन युद्ध ने पल्लवों और चालुक्यों को नितांत निर्बल बना दिया। वे चोलों और राष्ट्रकूटों की बढ़ती हुई शक्ति का सामना न कर सके। अंतिम पल्लव नरेश अपराजित 897 ईस्वी में चोल नरेश आदित्य प्रथम द्वारा मारा गया। इसके साथ ही पल्लव राज का विलोप हो गया। उधर चालुक्य नरेश कीर्तिवर्मन द्वितीय के विरुद्ध उसके शक्तिशाली सामंत दंती दुर्ग राष्ट्रकूट ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। दंती दुर्ग के पश्चात उसका चाचा कृष्ण प्रथम राजा हुआ। इसने कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित किया। इसके पश्चात चालुक्य वंश का भी पतन हो गया। पल्लव कालीन साहित्य। पल्लव काल में साहित्य की भी बड़ी उन्नति हुई, लेकिन अनेक पल्लव नरेश स्वयं विद्वान थे। इन्होंने अनेक विद्वानों को अपनी सभा में आश्रय दिया। कुछ विद्वानों के मतानुसार श्री विष्णु की राजसभा में संस्कृत का महाकवि भारवी रहता था, जिसने किरातार्जुनीयम की रचना की। महेंद्र वर्मन प्रथम ने दो प्रसिद्ध प्रहसन लिखे, मत्तविलास और भगवत दज्जुक। इनमें कापालिको और बौद्ध भिक्षुओं का उपहास किया गया है। नरसिंह वर्मन प्रथम की राजसभा में संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान दंडीन रहता था। इसने 10 कुमारचरित और काव्यादर्श की रचना की। इस समय कांची विश्वविद्यालय भारत का प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। वात्स्यायन और दिनांग भी इस विश्वविद्यालय में रहे थे। कांची के समीप ही एक मंडप था, उसमें 108 परिवार वेद पाठ करते थे। पल्लवों के अधिकांश अभिलेख संस्कृत में हैं। उनके शासनकाल में संस्कृत भाषा की बड़ी उन्नति हुई। इस काल में तमिल भाषा की भी बड़ी उन्नति हुई। लगभग 500 ईस्वी में तिरुवल्लुवर ने कुरल की रचना की। इसके विषय अरम, पोरुल और कामम है। पल्लव कालीन कला। पल्लव काल अपनी कला की गरिमा के लिए प्रसिद्ध है। प्रारंभ में इस कला पर काष्ठकला और कंदरा कला का प्रभाव दिखाई देता है, परंतु जैसे जैसे कलाकारों का अनुभव बढ़ता गया, वैसे ही वैसे इस प्रभाव से मुक्त होते गए। महेंद्र वर्मन प्रथम के शासन शासनकाल में पहाड़ियों को काटकर मंडप बनाए गए। इसकी योजना सरल है, इनके आगे स्तंभों से निर्मित प्रवेश द्वार है और इनके पीछे ही दीवार में एक बड़ा दो कक्ष है। इन सबसे अधिक विकसित उदाहरण उदनवल्ली और भैरव कोंडिक में प्राप्त होते हैं। उदनवल्ली का अनंत शयन मंदिर 4 मंजिल का मंडप है, इसकी ऊंचाई 50 फीट है। भैरव कोंडिक के मंदिर में स्तंभ के अधोभाग और शीर्ष भाग में सिंह मूर्ति स्थापित करने की प्रथा का सूत्रपात हुआ। मद्रास के मामल्लपुरम नगर में अनेक एक प्रस्तरी मंदिर बनवाए गए, इन्हें रथ कहते हैं। पहाड़ी पर बने हुए रथों की संख्या 10 है। इनमें से कुछ के स्तंभ बड़े ही कलात्मक हैं। कलाकारों ने पहाड़ी को काट काट कर बड़े सुंदर दृश्य प्रस्तुत किए। पंच पांडव मंडप में गोवर्धन धारी कृष्ण का दृश्य बड़ा दिव्य है। इसी प्रकार महिष मंडप में महिषासुर का वध करते हुए दुर्गा देवी का दृश्य बड़ा ओजपूर्ण है। 90 फीट लंबे और 23 फीट ऊंचे पर्वत खंड पर गंगावतरण का दृश्य बड़े सजीव रूप में उत्कीर्ण किया गया है। इसी के समीप एक मंदिर में शिव खड़े हैं, इनके समक्ष क्षीणगात्र भगीरथ तपस्या में लीन है। कालांतर में अधिक विकसित मंदिरों का निर्माण हुआ। इसमें सर्वप्रथम उल्लेखनीय समुद्र तटीय मंदिर है, यह लगभग समुद्र को छूता हुआ खड़ा है। इसका गर्भगृह भी समुद्र की ओर है। इसके चारों ओर एक सुदृढ़ प्राचीर है और इसका प्रवेश द्वार पश्चिम की ओर है। यह अपने अलंकरण के लिए प्रसिद्ध है। कांची का कैलाशनाथ मंदिर समुद्र तटीय मंदिर की अपेक्षा अधिक विकसित है। इसमें गर्भगृह, शिखर, मंडप और अर्ध मंडप मिलते हैं। इसका शिखर पिरामिड के आकार का है। इसके चारों ओर एक प्रांगण है जो चार दीवारी से घिरा है। डॉक्टर नीलकंठ शास्त्री के मतानुसार यह मंदिर पल्लव शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसी शैली पर बना हुआ कांची का बैकुंठ पेरुमाल मंदिर है। यह कैलाशनाथ मंदिर की अपेक्षा अधिक विकसित है।